नमो लोहे श्रोत्रिकार वर्ती अरहंताम नमो लोहे श्रोत्रिकार वर्ती सिद्धाम नमो लोहे श्रोत्रिकार वर्ती अहिर्यान नमो लोहे श्रोत्रिकार वर्ती उवचान नमो लोहे श्रोत्रिकार वर्ती शवशावन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदकुंदार्यो जनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणम जैनम जेतु शासनम नमः समय शाराय श्वानुभूत्या चकाशते चित्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शशुद पाग्नान दर्शन लखन शेषा में बाहिरा पावा सभी संयोग लखना मारो सुशाश्वत एक दर्शन नान लक्षण जीव छे बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुझे पाए छे वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे कई अन्य मारु जरी प्रमाण मात्र नहीं अरे ये जानतो और अंत ने गुण द्रव्य ने पाए जीव जाने आत्मन सशमो कामे लय करे नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक नायक भाव छे रीत सूत कथा इने जे ज्ञात ते तो छे छे जम नेत्र तेम ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे जाने जे कर्मो दैनी जरा बंद तेम मोक्ष ने ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल छे विशित ने वंदी कहूं सुत केवली कथिता समय प्रागृत हो तुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे या अनुभवते रने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहार पर द्रव्यो विषय ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अपनी ये शिविर का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें यहाँ पे 320 गाथा का प्रकरण द्रव्यानुयोग के माध्यम से चल रहा है। सवेरे जो अपनी चर्चा चली थी कि आत्मा जो है जो अपना त्रिकाली स्वभाव है जो अपना द्रव्य स्वभाव है सदाय मुक्त एव स्वभाव जो है वो मात्र जानन देखनहार है। कोई भी परिणाम प्रकट होते हैं तो उसका भी जानन देखनहार है और कोई भी बाह्य क्रियाएं चलती है तो उसका भी आत्मा जानने देखने वाला रहता है। तो आत्मा का स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है और वो स्वभाव से ही जानन देखनहार है। वो कुछ करने वाला नहीं है, वो कुछ करने वाला नहीं है माने कि वो कुछ कर सकता नहीं है, मात्र वो जान सकता है। करना उसका स्वभाव ही नहीं है, 100% उसमें करने की शक्ति का अभाव है और 100% जानने की शक्ति का उसमें सद्भाव है। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा नायक देव परिपूर्ण आत्मा सभी जीव ऐसे ही है, रागी द्वेषी मोही कोई जीव है नहीं, सब जीव ज्ञानमयी है। ज्ञान के अलावा जीव में कुछ होता नहीं है, ज्ञान में अनंत गुण शामिल हो जाते हैं। ऐसा जो परिपूर्ण आत्मा है वो मात्र जानना देखना उतना ही उसका काम है। चाहे कोई भी अनुयोग की चर्चा चलती हो मगर कोई भी अनुयोग में जो भी कार्य चलता हो तो वो कार्य का पता ज्ञान में चलता है। ज्ञान के अलावा उस अनुयोग को पता नहीं है कि मैं क्या हूं, दूसरे गुण को भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मात्र एक ज्ञान ऐसा स्वभाव है जो ज्ञायक का असाधारण लक्षण है, वो सब जानता है। इसलिए जानन देखन हार की महिमा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो जानने देखने वाली की ही महिमा करते रहते हैं। जैसे गुरुदेव का अपन बात सुने तो 320 गाथा सुने कि कोई भी गाथा का प्रकरण अपन सुन ले गए सभी बात आएगी, मगर जानना देखना स्वभाव को केंद्र बिंदु में रख के बात चलती है। ऐसा ये आत्मा का स्वभाव ही जानना देखना है, उसकी परिपूर्णता उसमें ही अंदर में है। परिपूर्णता उसकी कोई बाह्य परिणाम से कि कोई ज्ञानी गुरु से नहीं होती उसकी परिपूर्णता, कि उसका परिणाम शुद्धता रूप परिणम हो जाए तो उसकी परिपूर्णता होती, ऐसा नहीं है। आत्मा स्वयं परिपूर्ण है। जिसमें अशुद्धता है, जिसमें विपरीतता है, जिसमें अज्ञान भाव है, उसको भी वो मिटाने के लिए परिपूर्ण आत्मा के पास आना पड़ता है, क्योंकि ये तो परिपूर्ण ही है, उसमें अपूर्णता नहीं है, अशुद्धता नहीं है। ये एक रूप परमात्मा है, अखंड परमात्मा है। उसका सत जो सत का तत्व है वो अंदर में ऐसे बसा हुआ है कि उसमें कोई भी प्रकार का अज्ञान भाव है ही नहीं। उसमें ऐसा ज्ञानमय परिपूर्ण परमात्मा है। उसको देखने से ही, उसको जानने से ही ये सब विपरीतता चली जाती है, सब गुणस्थान की परिपाटी आगे बढ़ जाती है। सभी कार्य की संपन्नता होने के लिए एक ये आत्मा शुद्धता रूप बच गया है जीव के पास। कितनी भी परिणाम में अशुद्धता अनादि से चलती हो, जीव चारों गति में भटकते 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 फिर मनुष्य गति में फिर से आ जाए, ऐसी सिमंदर भगवान की देशना लेके आने वाले कुंतल आचार्य देव मिल जाए, कुछ गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया वो मिल जाए, कोई भी गति में जीव होने पर भी उसकी शुद्धता पर आंख नहीं आई अभी तक। ऐसी ये परिपूर्ण उसकी निज निधि अंदर में विद्यमान है। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा उसको ये गाथा दिखाती है, तेरा स्वभाव अकारक और अवेदक है। मात्र जानने देखने वाला तेरा स्वभाव है, तू आत्मा मात्र जानन देखन हार है, तू कुछ करने वाला नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ करके जीव अपना परिणाम को फिराने का प्रयत्न करता है, मगर परिणाम अपने सत्कार से ही फिरते हैं, कोई फिरा नहीं सकता उसको। इसलिए अभी जो संजीव जी ने बोला ना कि परिणाम को देखने का तू बंद कर दे, परिणाम पर से दृष्टि हटा ले, और तेरी दृष्टि जिसमें परिणाम नहीं है ऐसा अपरिणामी पर डाल दे कि मैं ये अपरिणामी शुद्ध परमात्मा हूं, मैं अखंड देव हूं, मेरे में खंड ही नहीं होता है। जहां खंड पड़ता है वो खंड रूप पर्याय रूप भाव भी मैं नहीं हूं। जब खंड होता है तब भी मैं अखंड रहता हूं, ऐसा मैं अपरिणामी परिपूर्ण पदार्थ हूं। ऐसे अपरिणामी पर दृष्टि कैसे जावे, और दृष्टि जाने पर ही उसको ये चतुर्थ गुणस्थान सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो जावे, ऐसी ये गाथा में बात चलती है। दृष्टि का विषय जब दृष्टि में आता है तब वो दृष्टि का विषय में दृष्टि अंदर नहीं होती है। दृष्टि का विषय में दृष्टि नहीं है, ऐसा दृष्टि का विषय है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा ध्रुव स्वभाव है। पूज्य गुरुदेव श्री ने आज सवेरे प्रवचन में बताया था कि ध्रुव स्वभाव जो है वो ऐसा परिपूर्ण है, ऐसा परिपूर्ण है कि एक समय की पर्याय का संयोग होता है और उसका वियोग हो जाता है, उसमें ध्रुव आता नहीं है। संयोग वियोग से पार ध्रुव परमात्मा है। ऐसी ये चीज, ऐसी ये वस्तु मात्र, वस्तु मात्र, वस्तु मात्र कि जिसमें अनंत गुण बसते हैं, ऐसी ये मेरी वस्तु है, ऐसा मेरा ज्ञायक परमात्मा है, वो दृष्टि में कैसे आ जाए। और वो दृष्टि में आते ही दृष्टि पूर्वक ज्ञान और चरित्र की दीनता कैसे हो जाए, इसकी बात यहां 320 गाथा में चलती है। अपन ने गाथा शुरू कर ली थी, 320 गाथा का प्रकरण जो है वो द्रव्यानुयोग में, ये जो पूज्य गुरुदेव श्री ने सर्वोत्कृष्ट गाथा है ऐसी घोषणा अपने प्रवचन में की है कि ये धिनागम में जिसे समय सार दृष्टि प्रदान ग्रंथ है, प्रवचन सार समय ज्ञान प्रदान ग्रंथ है और नियम सार जो है वो दृष्टि पूर्वक चारित्र प्रदान ग्रंथ है। ऐसी बात करते करते पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार ये 320 गाथा के प्रवचन में बोला था कि ये जिनागम की सर्वोत्कृष्ट गाथा हो तो ये 320 गाथा है। 320 गाथा सर्वोत्कृष्ट है कि 320 गाथा में बताया हुआ अपना शुद्ध आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि ये 320 गाथा में अपने शुद्ध आत्मा की महिमा बताई है, शुद्ध आत्मा के गुणगान गाए हैं, शुद्ध आत्मा की परिपूर्णता सिद्ध की है, परिणाम मात्र को अवस्तु कह दिया है, अवस्तु। यहां तक की बात पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। परिणाम अवस्तु कहा माने कि परिणाम में परिणाम नहीं है, ऐसा नहीं है। परिणाम में परिणाम की विद्यमानता निरंतर रहती है। उस समय द्रव्य स्वभाव को जो देखता है उसको परिणाम अवस्तु लगती है। ऐसे परिणाम की प्रीति कैसे छूट जाए और अपने त्रिकाली द्रव्य की प्रतीति कैसे हो जाए, जब तक उसको परिणाम की प्रीति चलती है ना, परिणाम का अवलोकन जरूर जीव को करना चाहिए। मेरा परिणाम कहां भटक रहा है, कहां चल रहा है, कितने विभाव चल रहे हैं, स्वभाव की सन्मुख क्यों नहीं हो रहा है, ये सब तो आत्मार्थी को प्रथम प्रथम होता है। अगर वो नहीं होवे तो उसको आत्मार्थी का सिंबल भी लागू नहीं पड़ता है, वो तो पहले में पहले उसको होता है। वो जिसको पता नहीं है उसके लिए आचार्य भगवान की गाथाएं नहीं होती है ये। मगर वो सब जान करके जो जीव आगे चलता है वो फिर परिणाम का अवलोकन ही करता रह रहे हैं तो द्रव्य का अवलोकन कभी नहीं कर सकेगा। वो द्रव्य को देखने से ही परिणाम सुधरते हैं, द्रव्य को अहम करने से ही परिणाम में शुद्धता का जन्म अपने से होता है। इस तरीके से अपनी द्रव्य स्वभाव की मुख्यता सर्वस्वता करके अपने द्रव्य को देखना चाहिए। परिणाम की चर्चा परिणाम का विषय चले तब जरूर होती है, मगर एक बार परिणाम की व्यवस्था जीव समझ लेता है कि परिणाम अपनी योग्यता से होता है, अपनी क्रमबद्धता से होता है, अपने सत्कार से होता है, उसका कोई करने वाला नहीं है, और अंदर जो अपना त्रिकाली ध्रुव पारिणामिक भाव है, जो अनंत गुणात्मक अपना त्रिकाली आत्मा है, एक एक गुण पारिणामिक भाव से भरे पड़े हुए हैं, वो एक एक गुण में उसकी अनादि अनंत पर्याय की योग्यता अंदर में गर्भितपणे पड़ी हुई है,
जो क्रम में पर्याय का उत्पाद वो अंश का अंति में से होने वाला है वो ही होता है और उसका परिणमन भी जैसा होने वाला है ऐसा ही होता है। ना तो उसको कोई पर की अपेक्षा लागू पड़ती है ना तो उसको कोई त्रिकालिक द्रव्य की अपेक्षा लागू पड़ती है। ऐसी परिणाम की निरपेक्षता है, ऐसी परिणाम की सत्पना है परिणाम का, ऐसा उसका सत्कारक है अंदर में। 49 गाथा है समयकार की, उसमें अव्यक्त के 6 बोल है, उसमें तीसरे बोल में ये बात समाई है कि परिणाम अंदर में है, मान कि परिणाम परिणाम रूप नहीं है, परिणाम गुण रूप है, मगर वो गुण जो है उसमें जो गुण का अनादिकाल का परिणमन अभी चल, जो गुण में से पर्याय का अंश का परिणमन हो गया और अनंत काल तक जितना अंश का परिणमन होने वाला है वो सब अंदर में अपने गुण में उसकी शक्ति रूप योग्यता में अंदर में उसका अंश मौजूद पड़ा है, उसको कोई फिरा नहीं सकता। एक पर्याय भी अगर फिर जाए तो सब पूरी व्यवस्था खत्म हो जाए। सर्वज्ञ भगवान के जो ज्ञान में जो बात आती है वो सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा है, सर्वज्ञ भगवान ने क्या देखा है कि सर्वज्ञ भगवान ने देखा है ऐसे परिणाम होते ऐसा नहीं है, जैसा परिणाम होने वाला है ऐसा सर्वज्ञ ने देखा है। अगर ऐसा परिणाम में कोई फर्क हो जाए तो सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान भी गलत साबित हो जाए। इसलिए परिणाम है, परिणाम नहीं है ऐसा नहीं है, मगर परिणाम उत्पाद वाला परिणाम द्रव्य में नहीं है, ऐसी त्रिकालिक ध्रुव वस्तु है, ऐसा अपना अपरिणामी स्वभाव है, ऐसा अपना ग्रायक देव है, ऐसा अपना चैतन्यपना है, वो चैतन्यपना अपनी लक्ष्य है, जीव उसको अनादि से भूल गया है और परिणाम की चिंता उसको अनादि से लगी है। ऐसे परिणाम क्यों चलते हैं, ऐसे परिणाम नहीं चलने चाहिए, ऐसे परिणाम तो होने ही चाहिए, समय दर्शन क्यों नहीं होता है, होना ही चाहिए, जरूर ऐसा विकल्प होना भी चाहिए कि समय दर्शन क्यों नहीं होता है, मगर उसके साथ साथ में समय दर्शन कैसे होता है उसका भी ज्ञान उसको जरूर होना चाहिए। अगर उसको वो ज्ञान नहीं होवे तो उसका श्रद्धान उसके परिणाम के पीछे ही चलता रहता है। परिणाम पर दो चलती है उसकी कि परिणाम क्यों नहीं सुधरते हैं, परिणाम क्यों शुद्ध नहीं होते हैं। अरे भाई एक समय का परिणाम है, वो सत्य है, सत्तारत है, बार बार कितनी बार आचार्य भगवान ने गुरुदेव ने सबने फरमाया फिर भी परिणाम के पीछे दौड़ क्यों लगती है जीव की। अभी इसमें भी आचार्य भगवान ने कहा है कि बंद और बॉक्स, बंद का कारण नित्यात्व अविरत प्रमात्म तथा योग और मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन नानी चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो बंद का कारण और मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग और बंद, बंद रूप परिणाम और मोक्ष रूप परिणाम, ये परिणाम समयवर्ती सत्य है। वो परिणाम का कर्ता, वो परिणाम का कारण कि वो परिणाम की विद्यमानता त्रिकालिक द्रव्य में नहीं है, ऐसा आचार्य भगवान का फरमान है। इसमें समय समय पे बंद होता है भाई, मुख दृष्टि वाले को सम्यक दृष्टि को भी दृष्टि अपेक्षा से बंद नहीं है, बाकी बंद उसको भी अस्थिरता जनिए चलता है। ये सब बात होने पर भी वो परिणाम में जो भी स्थिति बचती है वो अपने महिमावंत पदार्थ में नहीं है, वो सब बाहर चलता है। परिणाम, परिणाम का उत्पाद ये ध्रुव सत्ता है ना, उत्पादे 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 होता रहता है, ये ध्रुव सत्ता ऐसी नहीं रहती है, ऐसी नहीं रहती है, ऐसी नहीं रहती है, ऐसी परिपूर्णता मेरे में बसी हुई है, मेरे को उसको परिपूर्ण करना नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं। पर्याय मेरे को ऐसे देखती है कि मैं परिपूर्ण हूं। पर्याय अभेद होती है तो पूर्णता होती, ऐसा नहीं है, वो तो ज्ञेय रूप अभेदता होती है, ध्येय रूप अभेदता अनादि अनंत है। ऐसा ये स्वभाव, ऐसी अपनी निज निधि, ऐसी अपनी चैतन्य सत्ता कि जिसमें ज्ञान 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 बस रहा है, जानना 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 चल रहा है, जानने बिना वाला कोई जीव नहीं होता, तो मुख्यतः जानने की है। जो होता है, जो होने वाला है, जो हो रहा है, जो हो गया है, बस जानना स्वभाव है मेरा। इसमें 320 गाथा अमृत चंद्र आचार्य की टीका में भी आया है भावार्थ में कि आत्मा का स्वभाव क्या है, दूर रह के जानता है। क्या करता है? दूर रह के जानता है, कुछ करता नहीं है, वो जानता है कि ये हो रहा है, जानता है कि ये हो रहा है, जानता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है ऐसा जानता है, वो भी व्यवहार है। मैं जाननहार हूं वो निश्चय है। ऐसा इसमें ये गाथा में ऐसी बात कहना चाहते हैं। तो ये गाथा में अपन ने शुरू किया था कि जिस प्रकार नेत्र अग्नि रूप दृश्य को देखता है परंतु अग्नि रूप वस्तु को प्रज्वलित करने वाले पुरुष के समान उसका कर्ता नहीं है, उसी प्रकार तपे हुए लोहपिंड के समान अनुभव रूप से भोगता नहीं है, वेदता नहीं है, इसी प्रकार जैसे नेत्र कर्ता नहीं है और वो कोई पर पदार्थ में भोक्तापना किसी का है उसको भी वो भोक्ता नहीं है, इसी प्रकार ये सिद्धांत बतलाते हैं कि इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी माने कि त्रिकाली द्रव्य भी और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी, शुद्ध ज्ञान माने त्रिकाली द्रव्य और शुद्ध ज्ञान की सन्मुख जिसका परिणमन हुआ है वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, वो ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव, वो भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है न भोगता है। व्यायत भाव तो परिणाम का कर्ता भोगता पर का राग द्वेष मोह का नहीं है, मगर अपने त्रिकालिक नायक भाव की तरफ सन्मुख होके जो परिणाम प्रकट होता है उसको बोला जाता है शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, वो भी उसकी अशुद्ध उपादान रूप अशुद्धता का कर्ता भोक्ता नहीं है, वो अपने आत्मा के साथ अभेद होके शुद्ध ज्ञान परिणत हो गया है, वो भी कर्ता भोक्ता होता नहीं है। आत्मा के दो स्वभाव है और दोनों उपादान रूप है, एक त्रिकाली उपादान है और एक क्षणिक उपादान है। त्रिकाली उपादान है वो अपना अपरिणामी तत्व है, शाश्वत तत्व है, ध्रुव तत्व है, एक रूप तत्व है, उसको त्रिकाली उपादान बोला जाता है और परिणमन जैसा होता है पर्याय में प्रति समय वो परिणमन क्षणिक उपादान से होता है। क्षणिक उपादान के दो भेद होते हैं, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान है और एक क्षणिक शुद्ध उपादान है। क्षणिक अशुद्ध उपादान माने कि अपनी पर्याय में अज्ञान भाव मोरा द्वेष चल रहे उसको क्षणिक अशुद्ध उपादान बोला जाता है और क्षणिक शुद्ध उपादान किसको बोला जाता है कि अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ उसको बोला जाता है क्षणिक शुद्ध उपादान। तो ये जो त्रिकाली ज्ञान और ये शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, वो त्रिकाली ज्ञान माने कि त्रिकाली उपादान और ये शुद्ध ज्ञान परिणत जीव वो क्षणिक शुद्ध उपादान से अपने नायक की सन्मुख होकर परिणमन उसका हुआ है, उसको भी क्षणिक अशुद्ध उपादान में जो भी असुद उपादान रूप उसको राग द्वेष चल रहे हैं, उसका भी वो शुद्ध ज्ञान या तो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव वो अपने शुद्ध उपादान से कर्ता भोक्ता नहीं है। अशुद्धता उसकी पर्याय में चलती है, अशुद्धता कहीं बाहर नहीं चलती है, पर्याय उसकी है, वो पर्याय का जानना भी उसका स्वभाव है। वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ है, वो अपने में शुद्ध ज्ञान परिणत जीव वो जानता देखता है कि इतनी मेरी क्षणिक अशुद्ध उपादान से अभी मेरी अशुद्धता चल रही है, मगर वो अशुद्धता मेरी है ऐसा जानता है, फिर भी उसका कर्ता भोक्ता नहीं होता वो, क्योंकि परिणाम तो अपने होते हैं। अपरिणामी को देखता है, अपरिणामी की सन्मुख होता है, तो अपरिणामी ही मैं हूं उसको बोला जाता है शुद्ध ज्ञान परिणत जीव। और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव जो हो गया दृष्टि अपेक्षा से, उसको भी परिणाम में अभी अशुद्धता बाकी है, जब तक वितरागता नहीं होती है तो ऐसा अशुद्ध परिणाम का ज्ञान करता है, और ऐसा अशुद्ध परिणाम का ज्ञान करते करते बार 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 उसका ज्ञान और उसका चारित्र की दीनता अंदर में चली जाती है, उसको बोला जाता है कि ये जीव को बार बार सदुपयोग आता है। ऐसा ये जीव त्रिकाली द्रव्य और त्रिकाली द्रव्य के सन्मुख होता हुआ शुद्ध ज्ञान परिणत जीव वो भी कोई परिणाम का कर्ता भोक्ता कभी होता नहीं है, वो मात्र अकर्ता स्वभाव को जानता रहता है, अकर्ता स्वभाव मैं हूं ऐसा मानता रहता है, अकारक अवेदक मैं हूं ऐसा जानता मानता रहता है। परिणाम का ज्ञान होने पर भी उसकी दृष्टि परिणाम पर नहीं जाती है, उसकी दृष्टि द्रव्य को छोड़ती नहीं है, और उसका ज्ञान में परिणाम का ज्ञान हुए बिना नहीं रहता है। ज्ञान की द्विरूपता चलती है, एक तो ज्ञान का अंश स्वभाव की तरफ अभेद होकर परिणमता रहता है, उसको बोला जाता है परिणति, और एक विकल्पात्मक दशा में ज्ञानी का ज्ञान भी बाहर उपयोगात्मक रहता है, उसको बोला जाता है कि ये उपयोग उसका अशुद्धता रूप चल रहा है। ऐसे परिणति और उपयोग ऐसे प्रकार ज्ञानी को बज जाते हैं कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है। वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव तो अपने में अपने स्वभाव में रहता है, उसमें वहां ही उसका जानना देखना और उसकी दृष्टि वहां चलती रहती है, मगर वो ज्ञान की द्विरूपता होने से ज्ञान का ही जो परिणमन चलता है उसमें भी अशुद्धता जितनी है वो प्रतिभासित होती रहती है, और ऐसा ज्ञान को वो जानता है तो उनको पता चलता है कि ऐसा राग द्वेष अभी भी मेरी पर्याय में चल रहा है, ऐसा जानना करता है, वो उसको भोगता नहीं है, उसकी सन्मुख नहीं होता है, अपनी सन्मुखता छोड़ता नहीं है। ऐसा ज्ञानी का परिणमन जब वो ऐसा मैं ये त्रिकाली द्रव्य शुद्ध परमात्मा हूं ऐसा स्वभाव की सन्मुख परिणमन हो गया, ऐसा अहम हो गया, ऐसा सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग निर्विकल दशा में प्रकट हो गया, तो उसको ये निरंतर चलता रहता है, उसकी दृष्टि कभी छूटती नहीं नायक पर से। कुछ गुरुदेव श्री ने समय सार की 38 गाथा और प्रवचन सार की 92 गाथा में से ये अप्रतिहत भाव की बात की है। तो किसी ने पूछा कि अभी तो सात पंचम काल है, अभी तो सम्यक दर्शन भी क्षयोक्षम होता है, अभी साइज तो होता नहीं है, तो ये क्षयोक्षम सम्यक दर्शन तो गिर भी जाता है, मिथ्या दृष्टि भी वो हो जाता है, फिर समय दृष्टि हो जाता है, तो आप ये अप्रत्यत अप्रत्यत वाली बात करते हो, ये क्या है? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा जवाब दिया कि यहां गिरने की बात कभी मत करना, यहां तो ऊपर ऊपर जाने की बात चलती है, याद मत करना उसको कि मैं गिर जाऊंगा, कि कोई ज्ञानी गिर जाता है उसको याद मत करना, उसका मतलब है तुझे ज्ञानी नहीं दिखता है, तुझे उसकी पर्याय का परिणाम नहीं दिखता है, जब तक तुझे उसकी पर्याय का भी परिणाम दिखेगा तब तक तुझे तेरा द्रव्य स्वभाव नहीं दिखेगा। ज्ञानी ज्ञायक को देखता है तो तू भी ज्ञायक को देख, उसकी परिणति की चिंता ही मत कर, उसकी पर्याय में क्या हो रहा है वो मत सोच। गुरुदेव ने ऐसा कहा कि प्रदेश ने भी कहा, गुरुदेव ने कहा ये सम्यक दर्शन तो अप्रतिहत है, ये गिरने बिरने वाला नहीं है। पर पूज्य बेंश्री ने कहा कि हमारा सम्यक दर्शन तो जोड़नी साइक है। जोड़नी साइक माने क्षयोत्तम होने पर भी साइक को जोड़ने वाला है, नीचे जाने वाला नहीं है। ऐसे एक बार शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ वो गिरने बिरने वाली बात सोचना नहीं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं चैतन्य वस्तु मात्र हूं, ऐसा जिसको स्वभाव की महिमा आ गई, स्वभाव में जो जीव गर्ताव हो गया, उसने अपनी निज निधि देख ली, अपना चैतन्य पना लबालब भरा हुआ अनंत गुणात्मक आत्मा, असंख्य प्रदेशी आत्मा, एक एक प्रदेश में अनंत गुण पथरे हुए ऐसा आत्मा को अपनी निर्विकल दशा में अंतर्मुख होके एक एक कोने में जाके अपना ज्ञान फिरता रहा और श्रद्धा उसकी ऐसी मजबूत हो गई कि मैं ये परिपूर्ण ज्ञायक भाव हूं, उसका कभी सम्यक दर्शन जीता नहीं है। ऐसा यहां कहने चाहते हैं कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ। सिद्धांत में जो बातें हैं कि सम्यक दर्शन भी क्षयोत्तम गिरता है, ये सब बातें ध्यान में रख के ये सब बात है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ये तो सब है, मगर यहाँ ऊपर ऊपर जाने की बात है। गुरुदेव के मार्ग में गुरुदेव ने जो बताया है वो एकदम अप्रतिहत भाव से केवल ज्ञान लेने की बात है। केवल ज्ञान कैसे हो गए, चतुर्थ गुणस्थान में उसकी शुरुआत कैसे हो जाए, और तुझे काल क्रम से पंचम गुण स्थान आके सातवां छठा आके श्रेणी चढ़ के उपसम श्रेणी नहीं सोचो, सबक ही चढ़ने वाले हैं सब। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि सब भगवान है और सब भगवान हो जाओ, ऐसे आशीर्वाद दिए गुरुदेव ने। गुरुदेव ने ऐसे नहीं बोला सब मिथ्या दृष्टि है, सब रानी जैसी मोई है, सब अज्ञानी है, ऐसा नहीं बोला गुरुदेव ने। गुरुदेव बोले सब भगवान है, हमको तो भगवान ही दिखते हैं सबने। वो ऐसा भी बोले कि किसी को हमने गलती से पर्याय दृष्टि से देख लिया हो तो भी हम क्षमा चाहते हैं, ऐसे अपने ये परम धर्म पिता अपने गुरु उसकी ये दिव्य ध्वनिवत देशना जिसको मिले वो जीव को सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुए ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी ये गाथा में ऐसा कहना चाहते हैं कि तू जानन देखन हार है, तेरी सोच चला तेरा विचार चला तो भी इस तरह से विचार चला तू तेरा, दूसरा सब भूल जा, सब है सब है। किसी को पता कि ये सभा में इतने लोग बैठे हैं, कौन मिथ्या दृष्टि ऐसा कहेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। सबको पता है मोहराग द्वेष चल रहा है, अज्ञान भाव चल रहा है, इसका ज्ञान किसको नहीं है, बार बार इसका ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। जिसका ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करने की जरूरत है, वहां जाना चाहिए, उसकी महिमा होनी चाहिए, उसके ऊपर लक्ष्य जाना चाहिए, उसकी ही निरंतर उसका परिणमन में निरंतर उसका ही विचारधारा उसको चलनी चाहिए, तभी ये शुद्ध आत्म तत्व दृष्टि में आता है। कोरे विकल्प से कार्य नहीं होने वाला है, विकल्प चलते हैं उसके साथ में ज्ञान का एक अंश, उसकी विचारधारा अंदर चलती है और विचारधारा आगे बढ़ती है। विकल्प के सद्भाव में, विकल्प की सन्मुख हुए बिना, मन का संग के बिना एक ज्ञान का परिणमन जिसको अपने स्वभाव की महिमा आती है, उसका एक ज्ञान का परिणमन अंदर स्वभाव की ओर चलने लगता है। विकल्प की धारा होते हुए भी विकल्प से उन्मुख, स्वभाव के सन्मुख, अभी संग नहीं छूटा फिर भी वो एक ज्ञान का अंश विचारधारा में ऐसा चलने लगता है कि ये मैं परिपूर्ण शुद्ध आत्म तत्व हूं, मैं तो ज्ञायक भाव हूं, मैं तो भूतार्थ वस्तु हूं, मैं तो अपरिणामी तत्व हूं, ऐसा उसको एक अपने स्वभाव की महिमा आती है। तो बार 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 ज्ञान उधर जाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो ऐसी विचारधारा चलाना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी निज निधि क्या है। कि ज्ञानी धर्मात्मा इतना मेरे स्वरूप की महिमा करते हैं, इतना मेरा मेरी परिपूर्णता का गुणगान गाते हैं, मैं एक बार तो अंदर कुतूहल करके भी देखूं कि ये कैसी चीज है। ऐसा उसको प्रयत्न चलना चाहिए, ऐसा उसको भाव चलना चाहिए अंदर से। सभी चीज है, पर्याय में सब चलता है, वो सब तो स्वयं ज्ञान उसको होता रहता है। उसको ज्ञान करने नहीं जाना पड़ता कि अभी कितना राज चलता है, कितना द्वेष चलता है, कितना मेरा मिथ्यात्व चलता है, ये उसको करने नहीं जाना पड़ता। वो तो ज्ञान में जानने में सब आ ही रहा है, मगर ज्ञान उसको जानना छोड़ता ही नहीं है और अपने को जानने के लिए प्रयत्नशील ही नहीं होता है। इसलिए ये मिथ्यात्व का रोग निकलता नहीं है। मिथ्यात्व को अनंत संसार बोला, अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है। राग द्वेष तो अल्प संसार है, मिथ्यात्व चला जाए ना बाद में तो उसके पैर टूट जाते हैं, उसके पास चलने के लिए पैर नहीं, राग के पास तो टूट गया पैर उसका, अभी वो ज्यादा नहीं चलने वाला। सबसे बड़े में बड़ा दोष है मिथ्यात्व का, सबसे बड़ा दोष है। और मिथ्यात्व का नाम क्यों मिथ्यात्व, किसको कहते हैं, अपने को नहीं जाना उसी का नाम मिथ्यात्व है। नास्ती से सब आती है बात, अस्ति से अपने जब तक स्वरूप को नहीं जाना तब तक मिथ्यात्व चलता रहेगा। मध्य राग में अहम करना, पर को अपना मानना, ये सब बातें तो अनादि से जीव की पर्याय में पहिर लगते चलती रहती है, मगर ये अपने शुद्धात्मा है उसको नहीं जाना, इसीलिए मिथ्यात्व का परिणमन अनादि से चलता है। इसलिए अनादि से कर्म बंद होता है, इसलिए उसको ये जो सकाम अकाम निद्रा सविपाक अविपाक निद्रा का प्रकरण इसमें आने वाला है, वो प्रकरण यदि उसको बंध पूर्वक निद्रा चलती रहती है, अबंध पूर्वक नहीं चलती है। ज्ञानी को अबंध पूर्वक दृष्टि अपेक्षा से निद्रा चलती है चतुर्थ गुण स्थान में, और अज्ञानी को निद्रा होने पर भी सविपाक निद्रा और अकाम निद्रा होने पर भी उसको क्या है कि बंध पूर्वक निद्रा चलती है। सकाम और अविपाक तो ज्ञानी को होती है, और सविपाक और अकाम अज्ञानी को भी होती है। तो ऐसी ये निद्रा कैसे होवे, ये सब चीज में सबसे पहले में पहले शुद्धात्मा की मुख्यता होनी चाहिए। जब तक उसकी महिमा नहीं आएगी, उसकी उसको सचमुच में समझ नहीं होगी। पुरुषार्थ किसे बोलते हैं, कहते हैं ना कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, अपने स्वभाव के सन्मुख जाने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ की व्याख्या यही है कि अपना स्वरूप की यथार्थ समझ करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। और कोई पुरुषार्थ नहीं होता, स्वभाव की समझ जब आ जाती है तो स्वयं सूत परिणमन का स्वकाल पक जाता है। स्वभाव की समझ, अपने त्रिकाली द्रव्य की समझ और साथ में अपनी पर्याय की भी समझ उसको चलती रहती है। इसी यथार्थ समझ का नाम सचमुच में पुरुषार्थ है। यथार्थ समझ उसको द्रव्य और पर्याय की जैसी होनी चाहिए, जैसी उसको प्रीति लगनी चाहिए त्रिकाली द्रव्य की, ऐसी जब तक प्रीति नहीं चलती है तब तक पर्याय में से अहमपना उसका छूटता नहीं है। तब तक पर्याय की ओर ही उसकी दृष्टि चली जाती है, और दृष्टि को जब तक दृष्टि का विषय नहीं मिलता है तब तक दृष्टि शुद्ध नहीं होती है। दृष्टि को दृष्टि का विषय कब मिले, कि जब त्रिकाली द्रव्य कैसा है उसको पता चले, जब उसको उसकी महिमा आवे, जब उसको पता चले कि मैं तो एक त्रिकाली द्रव्य हूं, मेरे में अनंत गुण बसते हैं, मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, त्रिकाल वो मेरा काल है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण बसते हैं, वो एक एक अनंत गुण की अनंत पर्याय अंदर में पारिणामिक रूप से जितनी प्रकट होने वाली है, जितनी प्रकट हो गई है वो योग्यता रूप, जितनी प्रकट होने वाली है वो शक्ति रूप योग्यता रूप अंदर में विद्यमान रूप से मेरे त्रिकाली द्रव्य में गुण रूप पड़ी हुई है, वो है वहां से बाहर आती है तो बाहर आती है उसको देखता है, अंदर पड़ी है ऐसा स्वभाव को नहीं देखता। बाहर आती है उसको देखने के लिए प्रयत्नशील है कि अज्ञान हुआ, अभी समय ज्ञान क्यों नहीं हुआ, अभी समय दर्शन क्यों नहीं हुआ। अरे भैया, वो जहां से उसका प्रसव होता है, जहां से वो निकलती है, जैसा तेरा स्वरूप अंदर में है, जहां वो अभी भी अभी विद्यमान है, वो गुण रूप अभी विद्यमान है, ऐसा तेरा गुणी है, उसकी तुझे महिमा क्यों नहीं आती। तू उसको देख ले तो तेरी तृप्तता हो जाएगी, तू परितृप्त हो जाएगा, फिर पर्याय की तरफ तुझे देखना ही नहीं पड़ेगा, तुझे ही पता चल जाएगा कि मेरी पर्याय का स्वकाल कब पगेगा, मैं परिपूर्ण कब होगा, परिपूर्ण हूं तो परिपूर्ण में हो ही जाऊंगा, ऐसा विश्वास तुझे आ जाएगा। इसलिए यहां कहते हैं 320 गाथा में कि तेरा अकर्ता स्वभाव है, अकारक स्वभाव है, अवेदक स्वभाव है, अभोक्ता स्वभाव है, अपरिणामी स्वभाव है, चैतन्यमय स्वभाव है, ज्ञानमय स्वभाव है, बस तू उसकी महिमा कर, उसको देख, उसमें तेरी तृप्ति को परितृप्त करने के लिए वहां जा तू, ऐसा इसमें कहना चाहता है कि तू जानन देखनहार है, तेरा स्वभाव जानना देखना है, अपना जो स्वभाव है ना जानन देखनहार, उसमें तो कोई क्रिया नहीं है, है? वो तो निष्क्रिय परमात्मा है, क्रिया तो एक समय की उत्पाद रूप अंश जो प्रकट होता है उसमें क्रिया चलती है, एक समय के अंश के अलावा जितना अंश ही अंदर में विराजमान है, जैसा अंश ही अंदर में विराजमान है, जैसी अपनी त्रिकारता अंदर में विद्यमान है, वो त्रिकारता इतनी विशाल है, इसकी इतनी अमर्यादितता है, वो समयवर्ती अंश तो मर्यादित काल है एक समय का उसका, और ये अमर्यादित स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है, अनंत अंश उसमें केवल ज्ञान भी अनंत निकले तो भी इसमें कुछ कमी नहीं होती, ऐसा बदगत के बिना का संकोच किरण परमात्मा में हूं, उसकी महिमा क्यों नहीं आती। और वो परमात्मा है उसमें भी एक निष्क्रिय में निष्क्रिय का जानना देखने का स्वभाव भी अंदर क्रिया के बिना मौजूद है, जहां ज्ञान जहां दर्शन वहां जानना वहां देखना अंदर में रहता ही है, और वहां से ही उसका क्रियाशील परिणमन बाहर आता है, तो क्रियाशील परिणमन पर नजर जाती है उसकी, मगर निष्क्रिय में से जो वो आता है अंश, ऐसा निष्क्रिय परमात्मा में हूं वहां नजर नहीं चलती, अगर चलती है तो भी थोड़े टाइम विकल्प चलता है, फिर थकान लगने लगती है उसको, क्योंकि विकल्प में तो थकान होती है, है? समझ में थकान नहीं होती, यथार्थ स्वरूप की समझ होती है उसको थकान नहीं लगती, वो उसमें ही डूबने का प्रयास करता है, उसमें ही खोजने का प्रयास करता है। ज्ञान है ना, ज्ञान वो संशोधक होता है, वो संशोधन करता है, वो शुष्क बैठा नहीं रहता है, उसकी विचारधारा में संशोधन निरंतर चलता रहता है, मगर वो संशोधन का विषय क्या है, वो विषय अनादि से जीव ने वो ज्ञान में संशोधन का विषय पर्याय को लिया है, या एक समय की पर्याय को, या तो पर पदार्थ के तरफ उसका ज्ञान चलता रहता है, कभी उसने अपने ज्ञायक का संशोधन करने के लिए ज्ञान को विराम नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं बोला ज्ञान को कि तू अभी अपना संशोधन कर, उपयोग बाहर ही भटकता है, अनादि से जी उपयोग का दुरुपयोग करता है, एक समय भी उपयोग का सदुपयोग नहीं किया उसने, इसलिए अज्ञान दशा और मिथ्या तो भाव चलता रहता है। परिपूर्ण हूं ये बोलने से कोई परिपूर्णता ख्याल में नहीं आती है। इस शब्द में तो बोलना होता है, वो तो विकल्पात्मक चलता है सब, मगर ऐसे भाव से पता चलना चाहिए कि मैं परिपूर्ण हूं, मेरी शाश्वतता ऐसी है, मेरा ध्रुवपना ऐसा है। ध्रुव में भी एक ध्रुवत्वपना ऐसा है कि वो जानने देखने के लिए अंदर में समर्थ है। ऐसा मेरा कैसा स्वभाव है, ऐसा मैं जानन देखनहार हूं, ऐसी मेरी निज विधि है, ऐसी मेरी परिपूर्णता है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वरूप ही ऐसा है। ऐसा अंदर भाव से चलना चाहिए, ऐसे महिमा से उसको पता चलना चाहिए। अभी मेरे को पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है, सुखनायक का लक्ष्य करना है, तो मेघनायक हूं, मेघनायक हूं, मेघनायक हूं, ऐसे बैठ जाए, मेघनायक हूं, मेघनायक हूं, ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। इसमें समझ का काम है भैया, समझ के पीछे सब सरल है। अगर यथार्थ समझ हुई, अपने स्वभाव की महिमा आई, अपना त्रिकाली द्रव्य का बहुमान आया कि जो मेरा शाश्वत पना है वो कभी पर्याय में आया ही नहीं है, कभी आने वाला ही नहीं है, और मैं तो ऐसा ने ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूं, ऐसा जब उसको अंदर से भाव पूर्वक आएगा तो उसी का नाम पर्याय उधर ही चलने लगेगी, उधर ही चलने लगेगी। पर्याय को कोई फिरा नहीं सकता, द्रव्य की महिमा जरूर कर सकता है, और महिमा करते करते ही पर्याय फिर जाती है। सोगानी जी है ना, सोगानी जी ने एक बार, वो सोगानी जी को द्रव्य दृष्टि की मास्टरी है, कोई पर्याय की बात पूछे तो भी वो द्रव्य से ही जवाब देवे, ऐसी उसकी शैली उसकी ऐसी थी, क्योंकि उसको अपना गायक भाव पसंद पड़ गया, अपना गायक भाव को गायक भाव में वो चोट गए, अभी वो उखड़ने वाले नहीं है, तो वहां से ही बात करते रहते हैं। तो एक बार वो एकदम हंसने लगे, जैसे हंसना वो तो कसाई है वो अलग बात है, मगर वो उसको अंदर से ऐसी महिमा आने लगी, वो हंसने लगे। तो फिर किसी ने बोला कि आप इतना क्यों हंसते हैं, तो बोले कि मैं तो अंधा हूं। ये बना हुआ बनाव है, कई लोगों ने सुना भी होगा, जिसने प्रत्यक्ष देखा हो उसको तो पता ही है, वो बोले मैं अंधा हूं। तो श्रोता ने प्रश्न किया कि आप अंधे हैं, आपकी तो आंखें हैं, आप क्या अंधे हैं? तो उसने ऐसा जवाब दिया कि मेरे में जानने की क्रिया ही नहीं है, मेरे में जानने की क्रिया ही नहीं है, मैं अंधा हूं, ऐसा मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसी मेरी शाश्वतता है, ऐसा मेरा परम पारिणामिक भाव लक्षण से लक्षित परिपूर्ण परमात्मा अंदर में विद्यमान है। चार भाव रूप में नहीं हूं उसकी सोच भी ज्यादा नहीं करना, नजर उधर ही चली जाती है। मैं औदयिक भाव तो नहीं हूं, औपचमिक प्रयोगमिक साहित्य तो मेरे में से होते हैं, मेरे नजर करने से होते हैं, मेरे ही परिणाम है। भैया परिणाम है उसकी कोई मना नहीं करता, जो गुरुदेव को सुनता है, आचार्य भगवान को माथे पे रख के बात करता है, उसको जितना परिणाम का पता होता है उसका दूसरे को नहीं होता है। परिणाम की अस्थि मेरे द्रव्य स्वभाव में उसकी नास्ति, ऐसी मेरी अस्थि उसका अनुभव, उसका नाम मस्ती, ऐसी स्थिति होनी चाहिए जीव की। परिपूर्ण परमात्मा नायक भाव शाश्वत त्रिकाली द्रव्य वही मैं हूं, वही मेरी परिपूर्णता है, मेरे को परिपूर्ण होना नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं, उसका नाम ही वो परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा गुरुदेव ने ये गाथा पे बहुत स्पष्टीकरण किया है। अपन तो उसकी मूल बात तो अपने को घुसना है, ये विषय तो अपने यहां चल रहा है, गुरुदेव ने स्पष्टीकरण सब कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा। गुरुदेव ने ऐसा स्पष्टीकरण किया है कि केवल ज्ञान तक भी उसको किसी के पास जाना न पड़े, इतना स्पष्टीकरण गुरुदेव की वाणी में आया है। मात्र सम्यक दर्शन हो ऐसा स्पष्टीकरण नहीं किया गुरुदेव ने, केवल ज्ञान तक की बात गुरुदेव ने स्पष्ट कर दी है। इसलिए ये जो पुरुष की वाणी है ना, उसमें कोई ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है और न्याय युक्त सब आगम का सारभूत अध्यात्मा, एक एक न्याय वो कहते हैं ना, वो सब आगम में से मिलते हैं। आगम के आधार के बिना पूज्य गुरुदेव श्री कभी बोलते नहीं है। ऐसा ये परिपूर्ण ध्रुव तत्व अपना चैतन्य तत्व विनायक तत्व जो आचार्य भगवान ने अपने को बताया है और गुरुदेव ने उसके ऊपर मोर छाप लगाकर अपने को स्पष्ट किया है, ऐसा परिपूर्ण तत्व सब भवी जीवों के परिणमन में त्वरित आ जाए और सम्यक दर्शन नाम चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करके वो मोक्ष लक्ष्मी में परिपूर्ण रूप से वो बैठ जाए, ऐसी मेरे भाव। Thank you.